भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौरपाई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर परमानंद ऑल ग्लोरीज टू द सिंह। ऑल ग्लोरीज टू द सिंह। ऑल ग्लोरीज टू द सिंह। नमः विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमः महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं प्रेम भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म जन्म 13 मई असल पापो माँ विद्यान मधुसूदना। जन्म ते मई सौ पापो माँ विद्यान मधुसूदना। समुद्विजे भव भेत कंसाद ये कंसाद क्या है बोलिए। कंसाद अहम अधीर अधीर जन्म ते मई सौ पापो माँ विद्यान मधुसूदन। समुद्विजे भवधेतो कंसादहम अधीर अधीर उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपमलौकिकम्। शंख चक्र गदा पद्मा प्रिया ज्युष्टम चतुर्भुजम। बोलिए
जो कर्म से लाभ होना पड़ता है।
भगवान प्रकट हुए हैं श्री वसुदेव जी और माता देवकी के सामने, तो श्री वसुदेव जी ने अपनी स्तुति में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया कि भगवान किस प्रकार जगत की सृष्टि करते हैं और सबने फिर परमात्मा रूप से प्रवेश करते हैं, बहुत अवतार लेते हैं असुरों का विनाश करने के लिए, और अंत में उन्होंने यही कह दिया कि यह कंस बड़ा असभ्य है, यह जान करके कि आप देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, वो आपके बड़े भाइयों को मार दिया, तो जब सुनेगा कि आठवां गर्भ जन्म लिया है तब तो दौड़ते हुए आएगा, क्योंकि उसने स्पेशल पहरेदार नियुक्त किया है इस कारागृह में, ये लोग दौड़ करके कंस को खबर देंगे, और कंस अपने हाथ में अस्त्र ले करके आएगा, तो इससे यह सिद्ध होता है कि बस देव जी भी डर रहे थे, अभी वो दौड़ करके आएगा आपका कुछ अनिष्ट करेगा। यह बात सुन करके माता देवकी भगवान के ऐश्वर्य का तो वर्णन की कि आप भगवान हैं, साक्षात काल भी आपसे भय करता है, लेकिन फिर भी चूंकि माता है वात्सल्य भाव से वो घबरा गई और भगवान से आग्रह करने लगी कि आप इस रूप को अंतर्हित कर लीजिए। ते जन्म आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है इसको कंस न जानने पा रहे हैं। हे मधुसूदन, जन्म ते मयसो पापो माँ विद्या मधुसूदन, ते जन्म आपका जन्म मई मुझसे हुआ है, मेरे गर्भ से हुआ है, इस बात को पापवती कंस माँ विद्या न जान पाए। कैसे नहीं जान पाएगा, तो यही आशा था कि आप अंतर्ध्यान हो जाइए, आप इस रूप को तिरोहित कर लीजिए। तब भगवान ने कहा कि यदि आठवें बच्चे के जन्म का पता नहीं लगेगा तो कंस तुमको पूछेगा, मारेगा, कहाँ गया वो बच्चा। तो माँ कहती है समुद्र विजय भवा दे, तो मैं अपने मरने से नहीं डरती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत डर रही हूँ, भवद है तो आपके लिए डर रही हूँ, क्योंकि मैं एक अबला हूँ, मुझ में धैर्य नहीं है, मैं कंस से भयभीत हूँ, कंसाद्भीता अधीर अधीर, मेरी बुद्धि घबरा रही है, चंचल हो रही है, इसमें धैर्य नहीं है, मैं बहुत डर रही हूँ। अभी माता देवकी कांप रही थी, मैं बहुत डर रही हूँ आ करके आपका अनिष्ट कर देगा। जान जाएगा कि विष्णु जन्म लिया है देवकी के गर्भ से तो आपका वध कर देगा। मैं अधीर धी हूँ, हम अधीर धी, मेरी धी मेरी बुद्धि धैर्य नहीं रख रही, मेरी बुद्धि बहुत चंचल हो रही है, मैं आपके लिए बहुत डर गई, मेरा हृदय कांप रहा है। यही अच्छा होगा कि आप इस रूप को तिरोहित कर लीजिए। जिससे कौन सीधा जान पावे कि आपका जन्म मुझसे हुआ है, केवल मेरे गर्भ से जन्मे हुए बच्चों को मार दिया आपके कारण। जब आठवें पुत्र के जन्म का समाचार सुनेगा तो हाथ में अस्त्र लेकर के आएगा, आते ही पहले आप पर प्रहार करेगा, मार देगा। कितना सुकुमार शरीर है। तो भगवान ने कहा कि माँ डरो मत, मैं मधुसूदन जैसे दैत्य का मधु जैसे दैत्य का वध किया हूं, तो मेरे सामने ये कंस क्या है, मैं मार दूंगा। तो माता देवकी कहती है उस मधु से ये ज्यादा बलवान है, और जब आप मधु दैत्य का वध किए थे तो उस समय आप युवक थे या तगड़े थे, लेकिन अभी तो आप बच्चा हैं, इसलिए मेरा हृदय डर रहा है। इसको छिपा लीजिए। श्री भगवान वैसे ही मुस्कुरा रहे थे पर माँ घबरा रही थी। उपसंहर विश्वात्मा कहते हैं, हे विश्वात्मा, आप विश्व की आत्मा हैं, कोई भी रूप प्रकट कर सकते हैं, रूप तिरोहित कर सकते हैं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है यह रूप उपसंहर, इस रूप का उपसंहार कर दीजिए। अदह रूपम, यह रूप अलौकिकम, लोकातीत, लोक से भिन्न यह रूप आप तिरोहित कर दीजिए। जिस रूप में शंख चक्र गदा पद्म श्री है, शंख चक्र गदा पद्म है आप हाथ में लिए हैं, ये तो और ज्यादा पहचान है भगवान की। आपको कंस तुरंत पहचान लेगा और आपका वध कर देगा, इसलिए मैं बहुत डर रही हूं, आप इसका उपसंहार कर लीजिए। संबोधन कर रही है माता देवकी विश्वात्मा, विश्व की आत्मा। भगवान कुछ भी कोई भी रूप प्रकट कर सकते हैं और कोई रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए विश्वात्मा संबोधन है। यह अलौकिक रूप है, लोक में ऐसा रूप नहीं होता है। श्रिया जुष्टम, शंख चक्र गदा पद्म की शोभा से सेवित है यह रूप, चतुर्भुजम, चार भुजा, इस रूप में मैं कहीं आपको छिपा भी नहीं सकता। कंस के भय से मैं आपको छिपाना चाहूंगी किसी के घर पड़ोस में या कहीं भी, तो आप छिप नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना सुंदर यह शरीर चमक रहा है और चार भुजा है, चार भुजा में शंख चक्र गदा पद्म है। किसी के घर में ले जाऊंगी तो कहेगा कि ये तो भगवान है, हम इसको नहीं रखेंगे। तो आप साधारण बच्चा बन जाइए, दो भुजा दो बाहों वाला बच्चा बन जाइए, इसे कहीं आपको छिपा सको। माँ देवकी रो रही है बहुत, इसका सारा शरीर पसीने से तर बतर हो गया है, आंसुओं से भींग गया है। मैं आपको चाहते हूं कि छिपा दूं, अगर आप रूप तिरोहित नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं कहीं छिपा हूं, कंस आपको न देखे। तो इसलिए आप इस रूप का उपसंहार कर लीजिए। तो भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, माँ मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं, सारे देवता तुम्हारा गुण गाएंगे, तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी कि भगवान की यह माँ है। तो मेरे जन्म लेने से तुम्हारी महती श्लाघा होगी, बहुत जस बढ़ेगा। तो माँ देवकी कहती है विश्वम दिदेतत सुतनम निशांते निशांते निशा का अंत होने पर प्रलय के बाद सारे जगत की सृष्टि करके अनंत ब्रह्मांड आपके भीतर अवस्थित होते हैं, फिर प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को, सारे जल को, मिट्टी को, अग्नि हवा और आकाश सबको पी करके अपने भीतर खा करके आप शयन करते हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर रख लेते हैं। आप इतने महान हैं, बड़े हैं, तो जिनके भीतर सारा ब्रह्मांड रहता है वो भगवान मेरे पेट में आए, ये तो मैं तो देखी हूं, लेकिन जब मैं ये कहूंगी कि सारे ब्रह्मांड के पति श्री भगवान हमारे उदर में आए, हमारे पुत्र बने, तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सब कहेंगे यह आत्म प्रशंसा कर रही है, कैसे भगवान इसके उदर में आ सकते हैं, यह मिथ्यावादिनी है, झूठ बोलती है। तो इसके चलते मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, अपजस होगा असत्य बोलने का, तो मैं ऐसा कह भी नहीं पाऊंगी कि भगवान मेरे गर्भ से जन्म लिए या मेरे पुत्र हैं। इसलिए मुझे जस की कामना नहीं है, जस मिलेगा भी नहीं, अपजस मिलेगा, इस कारण से आप इस रूप को छिपा दें। श्री भगवान मुस्कुरा रहे, माँ विकल होकर के रो रही थी, तो मुग्ध थी इस बच्चे को क्या हो गया है, इतना अभिमान इसको है, इतना गर्व है कि मैं कंस को मार दूंगा, लेकिन यह कुछ नहीं कर पाएगा। देख रही है वो सुकुमार आंख, पर आंखों में कोई भय नहीं है, घबराहट नहीं है भगवान की। तो विनय कर रही है कि आप इतना निडर मत बनो, कंस बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति और स्वभाव अतिशय निर्दय है, क्रूर है, वो देखते ही कुछ कर देगा, अनिष्ट कर देगा। माँ को इससे प्रसन्नता नहीं है कि भगवान मेरा पुत्र बने हैं, उसको स्नेह बस अधिक डर बना हुआ है, कौन से अनिष्ट कर देगा। तो भगवान अपनी माँ को समझाते हैं, तुमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णि स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापति रकलमस। हे माँ सुनो, पूर्व सर्ग में स्वयं हुआ मनवंतर में तुम प्रसिद्धि थी मेरी माँ, और उस समय ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। तो पिताजी श्री वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति देवता थे। आप दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, ज्वाम वाई ब्रह्मणा दिष्ट प्रजा सर्ग, आप दोनों को पुत्र उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार करके आप दोनों ने इंद्रियों का संयम किया और इंद्रियों को कंट्रोल में करके आप बहुत बड़ा तप किए, तपस्या किए, नियम इंद्रिया ग्राम के पास है परम तप, तप की बहुत बड़ी तपस्या, कठोर तप। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया पुत्र उत्पन्न करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर सुतपा और कृष्णी इंद्रियों का संयम करके तप किए। वर्ष हिमा तप, वर्षा वर्षा सहे, शीत सहे, समस्त काल गुणान, काल के गुणों को, स्वभाव को आपने सहन किया। तपस्या में कभी वर्षा ऋतु आई, कभी गर्मी का महीना, और कभी जाड़े का शीत, तो आप लोगों ने सब सहा, इंद्रियों का संयम करके और तप करते हुए सब सहे, सह मानव। शीत सहे, गर्मी सहे, वर्षा सहे, आंधी सहे, एक नदी के तट पर, और ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो नदी जमुना जी थी, भद्र वन में तपस्या किए। ये भद्र वन भांडेर वन के पास है, तो भद्र वन में तपस्या की। इससे सिद्ध होता है कि ये वन बहुत पहले से सतयुग में ये हुए थे कृष्ण और सुतपा। सहमानव श्वास रोधा विनिर्भूत मनोमलव। और आप दोनों ने प्राणायाम किया, प्राणायाम करने से आपका मनोमल विनिर्धुत विशेष रूप से निर्धुत हो गया। मनोमल क्या है? मन में सांसारिक कामना जो है यही मल है। कोई भी इच्छा हो जाए, इच्छा न पूरा हो तो फिर क्रोध हो जाए, और इच्छा पूरी हो जाए तो और ज़्यादा पाने की इच्छा हो जाए, लोभ हो जाए, तो यही मन का मल है, मन की गंदगी है। मन यदि कृष्ण भावना से भरा रहता है तो वो निर्मल है। तप क्यों किया कृष्ण और सुतपाद? जब पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा गया तो इन्होंने तप किया। ये बहुत बड़े भक्त थे, इन्होंने विचार किया कि पुत्र हम ऐसा नहीं चाहते हैं जो नश्वर हो, जो मर जाए। अविनाशी परम पुरुष श्री भगवान हमारा पुत्र बने, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये तप कर रहे थे। बहुत कठिन तप। वर्षा आतप गर्मी और शीत घर में हिम, ये सब काल के गुण हैं। काल कभी ठंडा लेकर आता है, कभी गर्मी लेकर आता है। जैसा समय हो और समय का जो स्वाभाविक गुण है, विशेषता है, उन सबको हिस्सा है। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं सह मानव, सहते हुए दोनों आपने सहन किया। प्रतिकार करना चाहिए किए, लेकिन स्वाभाविक जो गुण हैं वो तो होंगे ही, मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। जाड़ा में जाड़ा लगेगा ही, कुछ प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन तपस्या में तो प्रतिकार नहीं। तपस्या के समय विशेष जाड़ा सहना और गर्मी के दिन में गर्मी सहना यह आवश्यक है। भगवान को पाने के लिए कुछ तप तो होना चाहिए। ऐसा तप हम लोग नहीं कर सकते सुतपा के समान और कृष्ण के समान, लेकिन हम अपनी योग्यता के अनुसार कुछ तप तो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने मंगला आरती का नियम बनाया है, आदेश दिया है, तो मंगला आरती के लिए उठ जाना इतना तो कर सकते हैं ना। और जब तक नाम जब पूरा ना कर लें तब तक कोई चीज खाए नहीं, इतना तो कर सकते हैं। पर जैसे ब्रह्मा जी की आज्ञा का ध्यान रखा कृष्ण और सुतपा ने, ऐसे श्रील प्रभुपाद के आज्ञा का आदर करना चाहिए। बहुत सी कामनाएं हृदय में रहती हैं, हृदय के कोने में सोई रहती हैं पर उनका पता नहीं होता है। मनुष्य कभी कभी तो प्रयास करके भी नहीं जान पाता है कि हमारे हृदय में क्या क्या सूक्ष्म कामनाएं हैं। स्थूल कामनाओं को वो जान जाता है लेकिन और सूक्ष्म फाइन जो कामनाएं हैं उसको नहीं जान पाता है, पता भी नहीं लगता है, वो सोई रहती है। जैसे मुक्ति की कामना, भगवान के धाम में जाने की कामना, यही मुक्ति कामना है। भगवान की सेवा के लिए नहीं, हम मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो करके और उनके ज्योति में या उनमें मिल जाए, आराम करें, ये जन्म मरण खत्म हो जाए, ऐसी जो कामना है ये बहुत सूक्ष्म कामना है, बहुत छोटी दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कामनाओं को समाप्त करना चाहिए। प्राणायाम करने से सुतपा और कृष्णी की कामनाएं चली गई। विनिर्धूत मनोमन भगवान कह रहे हैं, वी विशेषण नितराम धूत, सभी कामनाएं मन से चली गई। विशेषण नितराम धूत विनिर्धूत मनोमन, अगर मन का मल चला जाए तो उसको कहेंगे धूत मल, मल चला गया, लेकिन ज्यादा चला गया तो उसको निर्धूत कहेंगे, और पूरा पूरा समाप्त हो गया तो उसको विनिर्धूत कहेंगे। तपस्या करने से, प्राणायाम करने से कृष्णी और सुतपा की भगवत पुत्र विषय कामना के अलावा और सारी कामनाएं तिरोहित हो गई। वे तपस्या कर रहे थे, संकल्प करके कि हमें अविनाशी परमात्मा को अपना पुत्र बनाना है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी उसका शरीर व्यय नहीं होता, छीण नहीं होता। इस परम रहस्य को जानते थे तो भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए वे तप कर रहे थे। इस संसार में जब किसी का विवाह होता है किसी कन्या के साथ, तो उस व्यक्ति को अवश्य कामना हो जाती है कि हमको पुत्र होना चाहिए। पुत्र यदि नहीं होता है तो वह बहुत सा उपाय भी करता है, पुत्रेष्टि यज्ञ या किसी तांत्रिक से पूछता है, बेकार भटकता है, कई उपाय करता है, पर वो स्वयं जानता नहीं है कि कौन जीव मेरा पुत्र बनेगा। कोई पहचान नहीं होते कि हम यही जीव आना चाहिए हमारे पुत्र के रूप में। कोई भी आवे, कोई पूर्व जन्म में कोई भूत हो या चाहे गाय हो या कोई भी देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, हमारा पुत्र बने। परंतु जहाँ निश्चित पता है कि भगवान को पुत्र बनाना है और भगवान बन सकते हैं, तो बड़ी उत्कंठा से कृष्णी सुतपा तप कर रहे थे। तप में एक बात को और बता रहे हैं कि वहाँ प्राण रोध विनिर्धुत विनिर्धुत मनोमल, प्राण रोध किए, अपने प्राणवायु श्वास को कंट्रोल में रखे, प्राणायाम किए। यह प्राणायाम भक्ति परक प्राणायाम है, इसमें भगवान पर चित्त हमेशा लगा रहता है। ये आजकल का प्राणायाम नहीं केवल लोहार के भाती की तरह बस सांस बाहर भीतर करो। यह प्राणायाम ये तो हठ योग है, ये कोई योग नहीं है, वो तो भगवान में चित्त लगा करके भगवान की भक्ति कर रहे थे। भगवान के स्मरण का तार टूटता नहीं था, मन कृष्ण में लगा हुआ है और आँख से भगवान को देखते थे। अपने लिए श्री विग्रह भी रखे होंगे, वो तो सतयुग था, उस समय ध्यान ही प्रधान होता है। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह जरूर रखना चाहिए। हम लोगों का मन चूंकि स्थूल है, बाहरी चीज को देखना चाहता है, इसीलिए भगवान को बाहर रखना जरूरी है। भीतर हृदय बड़ा कलुषित है, स्मरण नहीं हो पाता है, कभी कभी भी नहीं हो पाता है, इसलिए भगवान के स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। दर्शन द्वारा, कीर्तन द्वारा भगवान का दर्शन करें, उनके नाम गावें, कीर्तन करें, गुण गावें, इससे भगवान हृदय में आएंगे। लेकिन सुतपा और कृष्ण हृदय में बसा लिए थे भगवान को, वो अभी भगवान के बारे में सुन करके और उनको पाने के लिए इस तरह कठोर तप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। एवं वाम तपतोस तीव्रम, बहुत कठिन तप कर रहे थे, दुष्कर्म, दूसरों के लिए जो करना बड़ा कठिन है ऐसे तप को कर रहे। भोजन क्या कर रहे थे, शरीर चलाने के लिए खाना तो जरूर जरूरी है, तो जीर्ण पर्णा नीलव हारा, जीर्ण पर्ण पत्तों से, पेड़ों से जो पत्ते पुराने होकर अपने आप गिर जाते थे, उन पत्तों को कभी कभी खाते थे, किसी दिन खाते थे, कभी नहीं भी खाते थे। और किसी दिन अनिल आहार, सूखा पेड़ का सूखा पत्ता खा करके भजन करते थे, और कभी कभी हवा खा करके, किसी दिन पत्ता नहीं मिलता था या नहीं खाना चाहते थे तो हवा से सांस लेकर के बस वो उसी को भोजन मान लेते थे। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आप दोनों ने जीर्ण शीर्ण पर्णा नीलाहार, शीर्ण पर्ण और अनिल का आहार करते थे, किसी दिन पत्ता खा करके रहे, किसी दिन हवा पी करके रहे, कुछ भोजन नहीं किया। कोई किचन आदि का तो प्रश्न ही नहीं था, कहीं बनावे खाए, इस तरह तपस्या की। ये हम लोगों के सुनने की चीज है, करने की चीज नहीं है। कर तो हम सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार है। किसी दिन हवा पी करके रह सकते हैं, किसी दिन पत्ता खा करके, सूखा पत्ता हिंसा के परिहार के लिए हरा पत्ता लोग नहीं खाते थे क्योंकि जानते थे कि वृक्षों की हिंसा होगी, किसी भी जीव को कष्ट देना हिंसा है। ये दूध भी नहीं पीते थे क्योंकि दूध वास्तव में बछड़े का आहार है, उसकी हिंसा होती है, उसको कष्ट होता है अगर उसका हक हम ले लें। तो इस तरह से किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वे सूखा पत्ता खाते थे, अनिल आहार करते थे, हवा का आहार। कितनी घोर तपस्या थी, जाड़े के दिन में नदी में आकंठ खड़ा रहते थे, कंठ तक पानी, ठंडा पानी। गर्मी के दिन में बाहर सूर्य की गर्मी में बैठते थे और अपने चारों तरफ अग्नि लगा कर इस तरह से वे स्नान कर रहे। और भगवान में मन लगा हुआ था, यही लालसा बढ़ रही थी कि भगवान हमारा पुत्र बनेंगे, हम पुत्र लालन का सुख लेंगे। तो यह तपस्या और यह भजन कितना दिन चला, भगवान कहते हैं देवताओं का 12,000 वर्ष बीत गए। देवताओं के अनुसार, देवताओं के माप के अनुसार इस पृथ्वी पर मनुष्यों का 365 दिन का एक वर्ष होता है और देवताओं का माप ऐसा है जब मनुष्यों का 365 वर्ष बीतता है तो उनका एक वर्ष बीतता है। इस हिसाब से 12,000 वर्ष, ये 12,000 उसको मनुष्य के वर्ष में गिना जाए तो 43,20,000 वर्ष हो गए। इस तरह तपस्या किए सुतपार कृष्ण 43,20,000 वर्ष। काल के गुणों को सहन किए, भोजन इस तरह से पत्ता और हवा खाए और तपस्या द्वारा, श्रद्धा द्वारा, श्रद्धा का अर्थ भगवान में पूर्ण विश्वास था कि भगवान सर्वज्ञ हैं और हमारे भाव को, हमारी इच्छा को समझते हैं, वे अवश्य कृपा करेंगे। विश्वास सबसे मुख्य चीज है, इसको श्रद्धा कहते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप दोनों के मन में परम श्रद्धा थी, श्रद्धा होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कवने उस सिद्धि की बिन विश्वास है। मनुष्य को कोई भी सफलता बिना श्रद्धा के नहीं मिलती है, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। हम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण के स्वभाव पर, उनके कृपामय स्वभाव पर, उनकी सर्वज्ञता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वे हमारी प्रत्येक भावना को समझते हैं, वे हृदय में ही हैं। और भगवद गीता भगवान की वाणी है, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान जो कुछ कहते हैं सत्य कहते हैं। एक बार भगवान ने कह दिया अर्जुन को कि अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भावामि। जो मुझमें निरंतर मन लगाए रखते हैं उन और भजन करते हैं उन भक्तों का मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो आवश्यक है उन सारी वस्तुओं को मैं जुटाता हूँ और जो जुटी हुई वस्तु है उसकी रक्षा करता हूँ। जुटाना और रक्षा करना योग और क्षेम इसके सब तरह से रक्षा करते हैं। सब चीज देते हैं जो जरूरी है। ये कोई दूसरे का वाक्य नहीं है, स्वयं भगवान का वाक्य है। ऐसा वर्णन है कि एक बार एक ब्राह्मण जो भगवान के परम भक्त थे वो गीता जी का पाठ करते थे पर बहुत दरिद्र थे। तो जगन्नाथ मंदिर में वे पाठ कर रहे थे, यह जब श्लोक आया आठवें अध्याय में, तो इस श्लोक को उन्होंने कलम से काट दिया। ये ठीक नहीं, मैं इतना भजन कर रहा हूँ और भगवान मेरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे। तो वे अपने घर चले गए गीता ले करके। और इधर उस दिन जगन्नाथ जी को जब पुजारी ने खोला दर्शन के लिए, पट खोला तो देखा कि उनके देह पर तलवार लगी है, लकीर लगी है, घाव लगा हुआ। बड़ी चिंता हुई, कौन किया, भगवान के पास कौन पहुंच करके तलवार से काटा है। जगन्नाथ जी ने प्रत्यक्ष कहा या सपना में कहा मुझे पूरा स्मरण नहीं है। जगन्नाथ जी ने कहा वो ब्राह्मण जो आकर के गीता पढ़ता था वही काटा है, क्योंकि गीता है मेरी वाणी है, मुझमें और गीता में कोई भेद नहीं है। तो गीता के श्लोक पर उसने कलम से काटा है, उसी से दिन देह कट गया है। बिल्कुल सत्य घटना है। और सदा के लिए सत्य है। आज भी भगवान योग क्षेम वहन करते हैं। एक घटना है, गुजरात की कुछ सौ वर्ष पहले एक बहुत बड़े वैष्णव हुए महात्मा ब्राह्मण, उनका नाम था नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता सदा कीर्तन करते रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था एक बहुत बड़े धनी परिवार में। अपना दामाद बहुत धनी घर का था, तो उसके लिए अपनी बेटी अपनी कन्या का भात भरना था नरसिंह मेहता। और जिस दिन भात भरना था उस दिन कहीं कोई बाजार में वस्तु खरीदने नहीं गए, कोई कपड़ा अलंकार या कुछ भी नहीं खरीदने गए। और टाइम आ गया जाने का, कन्या के ससुराल जाना था। वहाँ उस बड़े घर की सास और ननद आदि जो उस कन्या के संबंधी थे बहुत ताना मार रहे थे कि इसके पिताजी क्या लाएंगे, सबके लिए लाना होता है ना, अनेक प्रकार की साड़ी अलंकार। पर इधर नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, जिस दिन जाना था उस दिन एक टूटी फूटी बैलगाड़ी लिए और दो चार भक्त बस करताल बजा कर कीर्तन करते थे। कोई चिंता नहीं थी कि भात में क्या भरेंगे, लेकिन जिसको चिंता होनी चाहिए वो हो गई, वो तो कीर्तन में मस्त थे। और पहुंचे कन्या के ससुराल, तो इनके गांव से थोड़ा दूर रहने रहते हैं, द्वारकाधीश पहुंच गए। वहां जा करके बड़े सुंदर वेश में उन्होंने कहा कि मैं सावल शाह हूँ, मेरा नाम सावल शाह है, मैं उनका मुनीम हूँ नरसिंह मेहता का, और बहुत भेंट की सामग्री भात भरने के लिए लाए थे वो देने लगे। कपड़ा देख करके तो चकित हो गए, ऐसी साड़ी हम लोग कभी देखे नहीं, वो तो लक्ष्मी जी सब सजा करके दी थी, रुक्मिणी जी दी थी, वैसा अलंकार और वैसा वस्त्र कभी वो लोग देखे नहीं थे। भगवान सब भर दिए। नरसिंह मेहता तो अनन्य चिंत, हम तो अनन्य रूप से कीर्तन कर रहे थे, और उनके बदले में द्वारकाधीश सब कर दिए। बिल्कुल सत्य घटना है। इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास, सुदृढ़ विश्वास। तो कृष्णी और सुतपा में दृढ़ विश्वास था और तपस्या थी और भक्ति थी। भक्ति का अर्थ है जो साधन भक्ति के नियम है, हमें भगवान का स्मरण करना है। श्रद्धा भक्ति और तपस्या से युक्त होकर के आप दोनों ने मेरे इसी रूप का चिंतन किया। भगवान जिस रूप से प्रकट हैं उसी रूप को दिखा कर कह रहे हैं कि आप दोनों का ध्यान मुझने इसी रूप में लगा हुआ था। जब मैं आपके सामने प्रकट हुआ आपके भक्ति से प्रभावित होकर आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के परितुष्ट परितुष्टक अर्थ परित सर्वतः तुष्ट, मैं सब तरह से प्रसन्न हो गया और आप दोनों के सामने अपने को प्रकट किया। और जब आपसे पूछा बड़ी ही मुझसे बर मांगी तो आप दोनों ने मुझसे यही मांगा कि आपके समान पुत्र चाहते। आप दोनों संकोच के मारे मेरे ऐश्वर्य को देख करके साहस नहीं किए कि मुझको अपने पुत्र के रूप में मांगे। आप दोनों ने यही कहा कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो संकोच हुआ कि भगवान को कैसे अपना बेटा बनाए, कैसे बेटा बनने के लिए कहा। इसीलिए कह दिए कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं उस समय यही कहा कृष्ण और सुपा के सामने, मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ, न तत्समस्या भेदिका को तो कोई मेरे समान नहीं है। अतः अपने समान कहाँ खोजने जाऊँगा, कोई देवता कोई किन्नर मनुष्य कहीं भगवान के समान कोई नहीं है। शील में उदारता में, शील स्वभाव में उदारता में और गुणों में कोई समान नहीं है, इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बना। तो हे माँ, तुम केवल इसी जन्म में मेरी माँ नहीं हो, सतयुग में तुम पहले प्रिस्नी थी, तमेव पूर्व सर्गे भू, प्रिस्नी स्वयं हुए से पूर्व जन्म में स्वयं हुआ मनवंतर में, इस समय तो अब बालस्वत मनवंतर चल रहा है, स्वयं हुआ मनवंतर में ही तुम मेरी माँ बनी थी। तुम्हारा नाम प्रिस्नी था और तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लिया, मेरा नाम प्रिस्नी गर्भ हुआ। चूंकि मैं वरदाता शिरोमणि हूं, इसलिए मुझे संतोष नहीं हुआ वर देने से, पुनः मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ। माता जी, तुम मेरी माँ बने, तुम्हारा नाम अदिति हुआ और ये सुतपा कश्यप हुए। उस समय मैं तुम दोनों का पुत्र हुआ। इंद्र का भाई होने से लोग मुझे उपेंद्र कहते हैं और शरीर छोटा होने से देवता लोग मुझे वामन कहते थे। तो इस तरह ये मेरा दूसरा जन्म था। पहले जन्म में मैं प्रिस्नी गर्भ हुआ, सतयुग का जुगावतार।